ओम शांति। आकाश में सितारे तो बहुत होते हैं, पर हर सितारे की चमक अपनी अपनी होती है। आप बाबा का ऐसा एक चमकता हुआ सितारा है जो ज्ञान सूर्य की रोशनी से भरपूर है। आदरणीय सूरज भाई, जो सदा रूहानी नशे में रहने वाले और सबको रूहानी नशे में उड़ाने वाले हैं, तो आज हम आदरणीय सूरज भाई से अनुभव के बोल सुनेंगे। तो हम जोरदार तालियों से पहले भाई साहब का स्वागत करते हैं। आदरणीय सूरज भाई जी,
ओम शांति। खुश हैं सभी मधुबन में आकर? बहुत खुश हैं। आप सबके शुभ संकल्पों से ये यहाँ सेवाओं के प्रोग्राम शुरू हुए। हमारी बहुत समय से इच्छा थी कि बाबा के बच्चे इस सर्वश्रेष्ठ भूमि पर आकर सुख पाएं, सो अभी ये पूर्ण हुई। दो चार ग्रुप हो गए हैं यहाँ। संगम युग की हमारी यात्रा सफल हो जाए, सरल हो जाए, हम अपने से संतुष्ट हो जाएं और हम संसार को भी बहुत कुछ देने वाले बन जाएं। सभी को चिंतन करना है। हमारा जीवन, हमारे संकल्प अपने में सिमट कर रह गए हैं, अपनी समस्याओं में उलझ कर रह गए हैं, या हम संसार को कुछ देने की श्रेष्ठ इच्छा भी रखते हैं? क्या विचार है माताओं का? सोच के बताना, कहना बड़ा सहज है। मैंने बड़ा भारी क्वेश्चन रखा है, सुना सभी ने? अरे आप भी बैठी हैं। संगम युग पर बहुत होगा जीवन, केवल अपने में उलझ कर सिमट गया है, और भगवान को ऐसे रत्नों की जरूरत है जो संसार के काम आ सकें। सोच लेना, थोड़ी भी महान आत्माएं अगर अपने को इतना ऊंचा उठा दें कि वो संसार को देने में सक्षम होने लगे, तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा संसार के लिए। जैसे अभी उत्तराखंड में त्रासदी हुई, अभी भी चल रही है, छोटी नहीं है, कई लाख मरे हैं, अखबारों और चैनल से उसका पता नहीं चलता, और कितने लाख मानसिक रूप से प्रभावित हो गए हैं। आज ही अखबार में था 590 लोग राजस्थान के लापता हैं, लापता माना गए, जिनके घर में वो नहीं आए 15 दिन से माना गए। कितना बुरा होता है परिवारों में, पति गया लेकिन देख भी नहीं पाए, संस्कार भी नहीं कर पाए, बहते चले गए बच्चे, माँ देख रही है। हमें मानसिक रूप से अपने को भी बहुत स्ट्रांग बनाना है। तो मैं कुछ बड़ी बातें आपके सामने रख दूं या छोटी? सच बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। जो मनुष्य अपने चित्त को शांत कर दे वही बुद्धिमान है, और जो अपने मन को उलझा कर रख दे, कहां क्या हो रहा है ये देखने में लग जाए, शिकायतों में लग जाए, शिकायतें तो दिखती है प्रैक्टिकली, ये ऐसा कर रहे क्यों कर रहे, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकल हैं चीजें, लेकिन इन सब में जो अपने को साक्षी भाव में ले आए उसी की स्थिति सबसे महान होगी। साक्षी भाव की दो बातें आपके सामने रखता हूं। मुझे कहा अनुभव की बात सुनाओ, मैं अनुभव की सुनाऊंगा केवल। इन दो बातों पर मैं लंबे काल से अभ्यास करता आया हूं। बाबा की बातें हैं दोनों, साक्षी हो जाओ। दो बातें इसमें, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए, भगवान आवाज चाहिए। फिर से सुने, जो लिख रहे हैं वो लिख लो और इस पे चिंतन करना और इसको लाना जीवन में। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। आगे बहुत सुंदर बात है ना, वही होना चाहिए। गहरी फिलोसफी है ना ये। दूसरा, इस संसार में सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, यहां किसी का कोई दोष नहीं। चित्त को बिल्कुल शांत करें। जिनको अपनी स्थिति को महान बनाना है वो दो धारणाओं पे बहुत ध्यान दें, निष्काम भावना, निर्दोष दृष्टि। निष्काम भावना बहुत गहरा सब्जेक्ट है, आधी गीता इस पे ही लिखी हुई है। उसको समझना बहुत कठिन है। हर एक मनुष्य के मन में कामनाएं बहुत रहती हैं। हमने किसी को पानी पिलाया, हम सोचेंगे कम से कम एहसान तो माने, मर रहा था जिंदा कर दिया हमने, ये तो वैसे ही चला गया पानी पी के, गिलास भी झूठा ही रख गया। कामनाएं रहती हैं, माँ की बच्चों से, बच्चों की माँ बाप से, और ये कामनाएं पुण्य कर्मों के प्रभाव को छीन कर देती हैं। बड़े बड़े अच्छे पुण्य काम मनुष्य करे, लेकिन नाम की कामना रहे, मेरा नाम हो, लोगों को पता तो चले ये हॉस्पिटल किसने बनवाया, भले कमाई के लिए बनवाया हो पर नाम जरूर हो। कामनाएं जहां हैं, मान की कामना और नाम की कामना, वहां पुण्य कर्म छीन हो जाते हैं। पुण्यों का बल जो मनुष्य को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। निर्दोष दृष्टि, जो मैंने कहा, सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, किसी का कोई दोष नहीं। एक बहुत गुह्य धारणा, उसको विस्तार कर सकते हैं अपने अपने जीवन में। इस संसार में इस समय बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, उन्हें स्वीकार करके चित्त को शांत करना है। थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आप इस शब्द को याद रखेंगे, बहुत सारी चीजों को हमें स्वीकार करना ही है। एक माँ के दो बच्चे हैं, लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती है, लड़का 8वीं पढ़ता है, दोनों ही पढ़ाई पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, माँ बहुत दुखी है। बात प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, उन्हें पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या सभी विद्यार्थी फर्स्ट क्लास टॉप क्लास हो सकते हैं? क्लास में फेल होने वाले विद्यार्थी नहीं होते क्या? थर्ड क्लास लाने वाले नहीं होते? हमें इन सत्यों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। सब एक जैसे नहीं। हर माँ बाप ये तो जरूर सोचेगा मेरे बच्चे बहुत अच्छे हों, होशियार हों, नाम रोशन करें, परंतु ये प्रैक्टिकल में हर एक के भाग्य में नहीं है। कुछ माँ बाप ऐसे भाग्यवान हैं जिनके चार बच्चे हैं, चारों ही योग्य हैं, ऐसा भी कहें चारों ही महान हैं, इधर उधर भी नहीं होते, चरित्र वाइज भी बहुत महान है, वो तो बहुत भाग्यवान है। ऐसी चीजों को स्वीकार करके आगे बढ़ना। और ध्यान दें, हम जहां हैं, जिस स्थिति और परिस्थिति में हैं, गरीब हैं, उलझनों में हैं, छोटे से घर में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जहां हम हैं वहीं से हम बहुत ऊंचे जा सकते हैं। जिसको आगे बढ़ना है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। केवल अपने अंदर इच्छा दृढ़ होनी चाहिए। क्या विचार है सबका पीछे वालों का? आगे बढ़ना है। कई लोग सोचते हैं हमें तो कोई आगे बढ़ने नहीं देता। गलत विचार है, अच्छा है, गलत है। कोई एक द्वार हमारा बंद कर दे, दूसरा खुला है, जल्दी मिल जाएगा, निराश होने की जरूरत नहीं। हो सकता है बाबा ने वो द्वार बंद कराया हो, उसे दिख रहा हो द्वार के तुरंत बाद गड्ढा है, ये पार करते ही गिर जाएंगे, इसलिए इनका बंद करा दो। हम बाबा को गाली दे रहे हो, तुम भी कैसा है, खुला हुआ द्वार बंद करा दिया और वो मुस्कुराता हो ऊपर कि द्वार बंद नहीं कराया, खोल दिया है। इसलिए जिसको आगे बढ़ना है उसे बढ़ना है। मनुष्य को अगर कोई रोकती है चीज तो क्या, उसके अपने संस्कार, उसके अपने कमजोर संकल्प, उसका अपना छोटा दृष्टिकोण। जिनको महान कार्य करने हैं उन्हें अपने विचार भी महान बनाने पड़ेंगे। छोटे विचार रखने वाले, सीमित विचारों वाले कभी महान कार्य नहीं कर सकते हैं। तो सभी कुछ बहुत सुंदर जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के कुछ होता नहीं। कौन सा लक्ष्य है बोलो, कौन सा लक्ष्य और थोड़ा बताओ। हाँ, लक्ष्य छोटे छोटे बनाए जीवन के। आप 3 मास का लक्ष्य बना लें, 6 मास का बना लें। लक्ष्य जितना मजबूत होगा, एक लक्ष्य है हमारा फाइनल लक्ष्य, वो तो सब भूले रहते हैं, है ना। ये कह देंगे लक्ष्मी नारायण बनना है, पर किसको याद है बनना है, वो तो केवल कहने के लिए। संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना, वो भी कहने के लिए। खुली बात करेंगे हम, लक्ष्य तो वो भी हमारा है, पर किसी के ख्यालों में वो है थोड़ा ही। अगर हमें ख्याल में हो संपूर्ण बनना, तो न जाने हम क्या क्या करने लगे। आपको पता होता है 10 बजे ट्रेन पकड़नी जयपुर से, भागदौड़ करने लगते हैं या नहीं, या कहते हैं पकड़ लेंगे ना, क्या है आज नहीं तो कल, कहेंगे 10 बजे है तो क्या बात है 11 चले जाएंगे, कहेंगे। लक्ष्य तो ऐसी चीज होती है जो मनुष्य की सुस्ती, उसके अलबेलेपन को नष्ट कर देता है, चुस्त बना देता है। 10 बजे की ट्रेन है, भले ही वो लेट हो रही हो, हम लेट नहीं होंगे। एक लक्ष्य, और सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए योग अभ्यास बढ़ाने का लक्ष्य, जो हमारे चित्त को निर्मल करता है, जो हमें हल्का बनाता चलेगा। और अगर इस जीवन में किसी को आनंद लेना है, ब्राह्मण जीवन का संपूर्ण सुख लेना है, तो गृहस्थ वालों को भी अपना योग 4 घंटे अवश्य रोज कर देना चाहिए। इसके बिना इस जीवन में आनंद नहीं आएगा, इसके बिना माया से युद्ध समाप्त नहीं होगा, इसके बिना आप समस्याओं के बिना जीवन नहीं जी पाएंगे। ध्यान देंगे इस बात पर, 4 घंटे बैठ के नहीं। कोई सोचे हमारे पास तो 4 घंटे है ही नहीं, योग बैठने का सब्जेक्ट है ही नहीं। बैठो आप आधा घंटा, बैठो जरूर, लेकिन योग हमारा जीवन बन जाए। लेकिन बहुतों का जीवन कैसा हो गया है, मैं हंसी में किसी किसी को कह दिया करता हूँ, कई हैं योग युक्त और कई हैं योग मुक्त, जैसे योग उनका सब्जेक्ट ही नहीं है, ये दूसरों को दिया हुआ काम, अपना ही धंधा नहीं भाई, और काम करा लो, अपने सेवा करा लो, लेकिन योग मुक्त जीवन ये नहीं। योग मुक्त है तो जीवन बंधन युक्त हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सब, समस्याओं का अंबार लग जाएगा। अपने जीवन को बिल्कुल सरल सहज भाव से जीना है और नेचर को सॉफ्ट बनाना है। मैं हमेशा सोचता हूँ, जैसे आप लोग आए हैं, बहने करें, सभी अपनी नेचर को सॉफ्ट बनाने का यहाँ चिंतन करें। सरल, बहुत हल्के जीवन का आनंद लेने वाले, बात ब्राह्मण जीवन की नहीं, आप अपने जीवन का आनंद लेने वाले, परिवार का आनंद लें, सॉफ्ट नेचर, इस पे आप चिंतन करेंगे। यहाँ कोई क्लास भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नेचर बिल्कुल हमें सरल बनानी है। अब मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा जो आप अपना पुरुषार्थ करें, अपने परिवारों में जाकर, जयपुर में जाकर भी उसको आप सीरियसली फॉलो करें। योग का चार्ट आपका 4 घंटे हंसते बहलते ही हो जाएगा, आपको लगेगा भी नहीं कि हमें योग बढ़ाना है, वो आराम से बढ़ता जाएगा। पहली चीज, सवेरे उठने का आनंद होना चाहिए। बहुत लोगों से उठा नहीं जाता है या नहीं, सत्य बहुत लोगों से उठा नहीं जाता। उठते हैं तो उठ के सो जाते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। आगे उठना, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप 2 बजे उठो, आप 4 बजे ही उठो, और 4 से 8 के समय को अपने लिए प्रयोग करो अच्छी तरह। अपने को चार्ज करना है आपको, और मैं आपको कुछ विधि रख देता हूँ सामने, बहुत सिंपल। बांट लें आप अपनी दिनचर्या में उसको, हमें 5-7 काम करने हैं रोज सवेरे उठकर। पहला काम तो रोज सवेरे के पहले 10 मिनट हमें सुंदर संकल्पों से अपने को जगाना है, वो मैं आपको अब बाद में कहूंगा, लेकिन पहले 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये बहुत सुंदर जबरदस्त प्रैक्टिस है हमारी साधनाओं की। ये कितनी सुंदर है और इससे हमें क्या क्या मिल सकता है, ये हम चर्चाओं के द्वारा नहीं जान सकते, अनुभवों से। आप रोज करेंगे, नए नए अनुभव होते जाएंगे, नवीनता आप ही आती जाएगी, आपको पूछना नहीं पड़ेगा रोज रोज वही कर रहे हैं बोर हो रहे हैं, ये होगा नहीं। तो कम से कम 3 बार सवेरे, 3 बार शाम को, रात को, जब भी आपके पास टाइम हो। इसमें आप 10 मिनट 15 मिनट लगा दें, 5 स्वरूपों को अच्छी तरह फील करेंगे। पहली चीज, एक बहुत अच्छा अभ्यास रोज सवेरे। इसके बाद आगे पीछे कभी भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, कभी भी आप कर लें। ये बातें 4 से 5 के बीच भी की जा सकती हैं कुछ, और जो बच जाए वो बाद में भी की जा सकती हैं। रोज एक बार अच्छी तरह सूक्ष्म वतन में प्रभु मिलन का आनंद मिलना चाहिए। मिलन हुआ बाबा से हमारा, बिल्कुल आत्मा कन्विंस हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रभु मिलन हुआ अच्छी तरह। देखो यहाँ बाबा के मिलन के लिए कितना सब दो लोग भाग दौड़ करते हैं कि लाइन में कोई हमें खड़ा कर दे, वो रिबन दे दे, अब तो पूरा हो गया, चलो 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 जल्दी जल्दी। 1 सेकंड मुश्किल से बाबा के आगे खड़े रहते थे, कितने उसके लिए कुछ करते थे लोग। और हम सूक्ष्म वतन में उससे कई गुना आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या काम करना है, देखो उसकी विधि अपनाएंगे। मैं सूक्ष्म लोक में हूँ, आकाश के ऊपर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जैसे मैं यहाँ हूँ मैं वहां हूँ, सामने बाप दादा हैं, बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, फिर बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अब बाबा से आप फ्रेंडली मिलो, गले मिल लो, हाथ मिलाओ। फिर अब एक दूसरा अभ्यास करना है, बाबा से हमें 3 वरदान रोज लेने, 3 मैं कह रहा हूं, आप चुन लें अपने अपने। वरदान लेने का तरीका, बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और कहा, बच्चे विजयी भव, और स्वीकार करें इसको, विजयी माया पर विजयी, परिस्थितियों पर विजयी। ऐसे स्वीकार करें कि वरदाता का वरदान, सदगुरु का वरदान मिल गया। दूसरा बोला निर्विघ्न भव, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक, दोनों अलग अलग हैं। तीसरा सफलता मूर्त भव, और इन्हें स्वीकार कर लें। इसमें आप 5 मिनट लगाएंगे सूक्ष्म लोक में, बहुत आत्मा तृप्त हो जाएगी, सुंदर अनुभूति होगी। इसके बाद 2 काम और, 1 अब से ही बहुत अच्छी आदत डालनी है, उत्तराखंड से शुरू करना है, सकास देना। उत्तराखंड से शुरू करें, उत्तर से, अब तो राजस्थान वालों को भी सकास की जरूरत है बहुत। 600 लोग लापता और मर गए होंगे, 1000 समझ लो, 1000 से 1 लाख प्रभावित हुए होंगे, उनके परिवार मानसिक रूप से दयनीय स्थिति हो जाती है, मुझे तो याद आती रहती है बाबा की बात, साकार में बाबा कह गए हैं विनाश काल में ये संसार मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा, बनता नजर आ रहा है। मेरे पास जितने लोग कांटेक्ट करते हैं फोन से, उनमें से आधों की स्थिति दिखाई देती है मानसिक इफेक्ट बुरे, सहन नहीं हो रहे, अब बच्चे तंग कर रहे हैं, सहन नहीं हो रहा है, माँ बीमार होती जा रही है। कोटा में एक लड़का आया 11वीं क्लास में, माँ बाप को उनके साथ आना पड़ा, बहुत होशियार स्टूडेंट, इसमें की आदत लग गई, चोरी करने लगा, माँ बाप साथ आए बचाने के लिए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता, बाप को हार्ट अटैक हुआ, माँ ने खाट पकड़ ली, बच्चा बिगड़ गया पूरे, तीनों गए। मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है संसार, ज्ञान में थे, मुझे कॉन्टेक्ट किया कि ऐसा बच्चे का हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश की, इन दोनों तुम तो समझ लो, लेकिन मोह ममता ऐसी होती है, वो बच्चा न खुद संभला और उनको भी लेगा, और इसमें की आदत ऐसी होती है वो तो पागल कर देती है, जीवन बेकार कुछ दिन में। तो सकास देना दो चीजों को, एक जो त्रास दी अब चलेंगी, बहुत चलेंगी ना, विनाश काल नजदीक आता जा रहा है, अब ये सालों सालों में एक दो घटना होती है, फिर रोज हुआ करेंगे, रोज, और कोई कुछ नहीं कर पाए, सरकार क्या करेंगी बेचारी, किसी को क्या दोष दिया जाएगा, ये तो मनुष्य के कर्मों का खेल चल रहा है ना, सबने पाप बहुत कर लिए, उनका अब होगा, सेटल होंगे सब। तो सकास, और सकास देने का एक तरीका जिसमें बहुत आनंद आएगा आपको, सकास देने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आप अभ्यास करेंगे, हम ऊपर हैं, अब जैसे संकल्प करें उत्तराखंड के ऊपर हैं, राजस्थान वालों को देना है राजस्थान के ऊपर है, मैं फरिश्ता हूँ, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे फैल रही हैं नीचे, आ रही हैं फैल रही हैं, बार बार अभ्यास करते रहो, मन को एकाग्र करने का बहुत अच्छा तरीका, बाबा की किरणें यार देखो, बाबा किरणें फैल रही हैं, तीन रूप से करें, आधे आधे मिनट में करें, एक एक बार बाबा को देखें, आती हुई किरणें देखें, फैल रही हैं, फिर एक एक मिनट में करें, फिर दो दो मिनट में, इससे अपनी स्थिति बहुत सुंदर होगी, क्योंकि इससे हमें देने का सुख मिलेगा, और फिर संकल्प करें, जिनके लोग मरे हैं मरे, और जिंदे जो दुखी हैं अशांत हैं सबके चित्त शांत हो जाएं, क्योंकि आत्माएं भटकेंगी ना, एक साथ सबको शरीर नहीं मिल जाते, तो ये नीचे वाले मनुष्यों को भी बहुत कष्ट देंगी, हमें स्वयं को भी मुक्त रखना है और दूसरों के लिए भी छत्र छाया बनना है, हमारे वाइब्रेशंस दूसरों के लिए छत्र छाया बन जाएंगे। दूसरा काम करना है जो हमारे अपने फायदे के लिए, कल्याण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, रोज ऐसे ही 5 मिनट प्रकृति को सकास देना, 5-5 मिनट ही करेंगे हम, उसे हमारी आदत बनेगी, हमें उसका आनंद बहुत आएगा और हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ेगी, ये सब काम करने को मन करेगा। चलो 9:30 का समय हो गया, हम संसार को सकास देंगे, सभी फील करें अपने को हम ऊपर हैं और बाबा की किरणें हम पर पड़कर चारों ओर फैल रही हैं।
अपनी अंतर आत्मा को शांति से
पसंद है सभी को, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं तो एक बात और कहता हूँ सबको, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, जिनका योग अच्छा है, कि अपने योग को सकास के रूप, सकास देने के रूप में चेंज कर दें, कि अब हम योग अपने लिए न करें, संसार के लिए करें। एक बहुत गुहे बात आपको सुना देता हूँ, जो प्राय पता नहीं है लोगों को, 77 या 78 की मुरलियों से है। तुम्हें केवल अपने ही विकर्म विनाश नहीं करने, ऐसा समय आएगा तुम्हें अनेकों के विकर्म विनाश करने होंगे। तो जो अच्छे योगी हैं, 4 घंटे से अधिक जो योग कर सकते हैं, वह योग को संसार के लिए समर्पित कर दें, तो हमारे वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं के विकर्म और समस्याएं नष्ट करने लगेंगे। प्रकृति को सकास, प्रकृति ने हमारी 5000 साल पालना की है और करते करते खाली हो गई। अब उसको हमारी पालना की जरूरत है। कौन सी पालना चाहिए उसे हमसे? पवित्रता की सकास। प्रकृति की वास्तविक खुराक है प्योरिटी। जो जितने पवित्र हैं वो प्रकृति की उतनी ही मदद कर रहे हैं। प्रकृति का सचमुच हम पर बहुत एहसान है, हमें पता नहीं वो हमें क्या क्या दे रही है। मैं एक ही छोटा सा उदाहरण दूं, प्रकृति कह दे मैंने तुम्हें इतना साल तक हवा दी है, अब 1 मिनट के लिए जरा बंद कर दूं। 1 मिनट ज्यादा नहीं, 5000 साल में से 1 मिनट क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा। 1 मिनट तक जिंदा रहना किसी के बस का नहीं है। ये योगदान है ना प्रकृति का, वो हमें जीवन दिए हुए, देह भी उसने दिया, जीवन भी वही दे रही है। हम उसे यदि सकास देंगे तो क्या फायदा होगा? क्योंकि फायदा हमें पता होता है तो हम जरा काम करते हैं। विनाश काल में प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करेगी। विनाश काल में भी हमें पानी की, अन्न की कमी नहीं होने देगी, और ये सब दुर्गति की स्थितियों में हम नहीं जा पाएंगे। जहां हम होंगे वहां ये सब सीन होंगे नहीं, रुक जाएंगे। हम अपनी शक्तियों को पहचानते चलें। जहां योग युक्त आत्मा है, जहां पवित्र आत्मा है, वहां बहुत सारी त्रासदियां होंगी नहीं। अभी जो सुन रहे थे कि शिवलिंग बचा रहा और कुछ बचा रहा, तो मैं आपको एक गुह्य रहस्य बता देता हूं। वहां के पुजारी से पूछा ना, तो उसने भी ये उत्तर दिया ना, भाई पाप बहुत होने लगा यहां, भावना से लोग नहीं आते, भक्ति पूजा पाठ से पाप बहुत करने लगे हैं। तो देखिए पवित्रता का कितना महत्व है। जहां एक बहुत अच्छी पवित्र आत्मा है, उसके पवित्र वाइब्रेशंस जो चारों ओर फैलते हैं, तो विनाश की तरंगों को रोक देते हैं, रिपल्सन हो जाता है, वापिस कर देते हैं। इसलिए यहां वो शिवलिंग था, है वहां तो कुछ ना कुछ पवित्र वाइब्रेशंस थे ही ना, तो वहां तक विनाश नहीं पहुंचा। तो आगे चलकर ये होगा, बहुत अच्छी पवित्र आत्माएं जहां होंगी वहां चारों ओर भी विनाश रुका रहेगा। तो हमारी पवित्रता प्रकृति के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसा समय आएगा, मुझे एक विजन दिखा करता है, आग लग गई है कहीं लंबी चौड़ी, 1 किलोमीटर में आग लगी हुई है, बुझाने का कोई साधन नहीं हो पा रहा है। योगी आत्माएं खड़ी होंगी, प्रकृति को कहेंगी प्यार से, अग्नि देवता को, अब शांत हो जाओ, और अग्नि बुझती चली जाएगी। ये सब सीन होंगे हमारे सामने आगे, लेकिन ये उनके द्वारा होंगे जिन्होंने प्रकृति को बहुत सकास दी होगी, प्रकृति एहसान मंद हो जाएगी उनकी बातों को, चाहे उनका आदेश कहो या रिक्वेस्ट, उसे स्वीकार करेगी। तो कैसे देंगे हम? इसका एक बहुत मनोरंजक तरीका आप अपनाएंगे ताकि आपको मजा आने लगे प्रकृति को सगास देने में। ऐसे ही फील करेंगे, मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। दो संकल्प, बाबा की पवित्र किरणें लेंगे और फिर अभ्यास करेंगे। पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अब तीन तत्वों को जा रही, आकाश अग्नि वायु, चारों ओर हैं हमारे तीनों तत्व, आकाश अग्नि वायु। कुछ देर, एक दो मिनट, फिर अपने सामने देखेंगे धरती का गोला, ग्लोब। मेरे मस्तक से पवित्र किरणें निकलकर इस ग्लोब को जा रही हैं, एक मिनट। फिर ऊपर से देखेंगे दूर दूर तक फैला हुआ सागर। मेरे आंखों से, मस्तक से किरणें निकलकर जल में समा रही हैं। फिर देखेंगे नौ ग्रह हमारे सामने खड़े हैं देव रूप में, एक एक को दृष्टि देंगे। पवित्र किरणें दृष्टि से जा रही हैं, उन्हें संकल्प देंगे, अब तुम भी पावन हो जाओ, हमारे सहयोगी हो जाओ, तुम हमारे मित्र हो। पांच मिनट आनंदित स्थिति हो जाएगी। ये दो अभ्यास, सकास देना संसार को और प्रकृति को पवित्रता की सकास देना, सवेरे के टाइम करेंगे। जिसके पास शाम का भी समय है वो शाम को भी करेंगे। एक बहुत अच्छी जागृति का अभ्यास मैं और आपको कहूं, बहुत सुख देगा आपको। जैसे मैंने कहा, सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से तीन वरदान लेंगे। अब इसको दूसरा इंटरेस्टिंग रूप देंगे, बाप दादा का आह्वान करेंगे। आप आदत डालो बाप दादा के आह्वान की, हमारे बुलाते ही बाबा आ जाता है। और फिर क्या अभ्यास करेंगे? बाबा हमारे सामने है, बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया और याद दिलाया। रोज एक बार जरूर कर लेना, सवेरे भूल जाए, शाम को, दोपहर, कभी भी। अब बाबा ने हमें याद दिलाया, क्या याद दिलाया? बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो, तुम कल्प कल्प के विजयी हो, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। याद करो, भक्त तुम्हारे नाम का स्मरण करके भी समस्या मुक्त हो जाते हैं। तुम्हारे पास समस्याएं कहाँ से आई? तुम विघ्न विनाशक हो, तुम्हें संसार का कल्याण करना है, तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम तो पूर्वज हो सबके, तुम तो फरिश्ते हो। याद दिला रहे, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मेरी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, तुम कमजोर नहीं हो। यह है आत्म जागृति, स्मृति स्वरूप होना, क्योंकि हम भूले रहते हैं अपने को और अपने को साधारण मान लेते हैं। ये रोज आके आप एक बार करेंगे, जीवन खुशियों से भर जाएगा। स्मृति स्वरूप, देखो मुझे आजकल एक चीज बहुत आनंद दे रही है, हजारों बार सुनी वो बात हमने, आपने भी सुनी है, उसको जरा आनंद का रूप दे दें कि जो कुछ हो रहा है वो कल पहले भी हुआ था, ये ड्रामा चलता आ रहा है। मैं सोच रहा था, एक क्लास में हुआ है, मैं क्लास करा रहा था, उसमें चर्चा हो गई कि हम यहाँ बैठे हैं, कितनी बार बैठे? अब उस अनगिनत बार में से हम 10,000 कह लें, अनगिनत में से हम 10,000 बार यहाँ बैठे। प्रभु मिलन कितनी बार हुआ? 10,000 बार। माया को हमने कितनी बार जीता? स्वर्ग में, उन सुखों में, आनंदों में कितनी बार रहे? सोच के देखो जरा, मजा आ जाएगा। कोई काम आपने 10 बार भी कर दिया हो, जब 11वीं बार हमें करने को कहेंगे तो कैसा लगेगा? कुछ भी नहीं, ये तो हम रोज करते हैं। कोई अब माताओं को चाय बना लाओ जरा, कहेंगी बड़ा मुश्किल काम है, पता ही नहीं कैसे बनती है, कहेंगे। हमने भी 10,000 बार, बात तो अनंत, पर मैं 10,000 ले रहा हूँ उनसे, 10,000 बार हमने ये सब काम किए हैं, 10,000 बार ऐसे सुख पाया है। सोच के देखना, स्मृति स्वरूप होते जाएंगे, नथिंग न्यू। ये विनाश होगा, हाहाकार होगी, मरेंगे जिएंगे, दुख बढ़ेगा अशांति होगी, ये तो बार बार हुआ है। इसलिए बाबा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसने हजारों बार देखा है ऊपर बैठ के, यही होता रहता। कहेगा कल तो हुआ था, कल फिर होगा, कुछ भी तो नहीं है। ये चिंतन हमारी ऐसी फीलिंग बना देगा, निर्माण करेगा हमारे अंदर इस चीज को कि तो रिपीट हो रहा है, हम खेल खेलते आ रहे हैं अनेक बार, लेकिन इसको फीलिंग मिला ना, तब सुख मिलेगा, ज्ञान से नहीं। ये स्मृति स्वरूप की स्थिति। उसके बाद सवेरे के टाइम करेंगे पावरफुल योग, जिसको ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं, उसका भी आनंद लेंगे। और उसका एक बहुत सिंपल तरीका मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि हमारे ब्राह्मण परिवार में से अगर मैं गलत नहीं हूं तो केवल 1% लोग ही पावरफुल योग कर पाते हैं, 99% लोग नहीं। आपको इस परसेंटेज को 95 करना है, करेंगे? यानी हमें करना है। इसके लिए मनुष्य को सारा दिन व्यर्थ से मुक्त रहना चाहिए, और व्यर्थ से मुक्त रहने का एक ही तरीका है, व्यर्थ में नो इंटरेस्ट। माताओं को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, मैं ठीक कहा या गलत? गलत कहा हो तो कह दो यू आर रॉन्ग। माताओं की मंडली बैठ जाती है, बस आगे मैं नहीं कहूंगा, बचेंगे इससे। व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त, क्योंकि जब तक चित्त शांत ना हो वो स्थिति आएगी नहीं। मुझे इसके उल्टे सीधे सब अनुभव हैं, सबको ही सब अनुभव होते, होने भी चाहिए। मन में एक भी संकल्प टक टक कर रहा हो ना, उस स्थिति का आनंद आता ही नहीं। तो क्या करेंगे आप, 10 मिनट निकालेंगे, और ये 10 मिनट आपको सुख देगा। कभी भी सवेरे 6 बजे तक निकाल लें, सेंटर में जाएं, मुरली से पहले ये 10 मिनट निकाल लें, मुरली के बाद निकाल लें। अब दो प्रैक्टिस करेंगे, 10 सेकंड आत्मा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करना, सहज भाषा में आत्मा को देखना, बिल्कुल मुझसे किरणें फैल रही हैं, जैसे मैं हूं, ये देह है ही नहीं, केवल मैं। प्रैक्टिस करते करते ऐसा अनुभव कर लेना है, और 10 सेकंड शिव बाबा, उसके स्वरूप पर बुद्धि स्थिर, जैसे वही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। फिर 10 सेकंड आत्मा, 10 सेकंड बाबा, फिर इसको 20 सेकंड कर दें, 30 कर दें, ये बढ़ेगा आप ही। इससे एकाग्रता बहुत बढ़ेगी और व्यर्थ के प्रति रुचि भी घट जाएगी, क्योंकि मन जब आनंदित स्थिति में होता है तब व्यर्थ की ओर वो नहीं जाता। मन खाली है तो इच्छा होती है कोई आए, बात करे, कुछ भी बात करे, व्यर्थ बढ़ जाता है। इन चीजों को आपको रोज करना है, पसंद है? सारे दिन के लिए मैं सिंपल सी बात कहता हूं, कोई भी एक स्वमान आप ले लें, सारा दिन उसको याद करें। देखो एक बहन का अनुभव, उसने मुझे कुछ दिन पहले ही फोन किया, मैं योगी बनना चाहती हूं पर योग लगता नहीं, इच्छा बहुत तेज पर योग लगता नहीं। मैंने उससे भी यही पूछा, पहले तो व्यर्थ को छोड़ना पड़ेगा। मैंने उससे पूछा, व्यर्थ का बहुत है मेरे पास तो, सीधा बता दिया, बहुत है मेरे पास तो। तो मैंने कहा आज से कानों में रुई डाल लो, जरा सुनना बंद, और एक छोटी सी प्रैक्टिस मैंने उसको कहा, 3 दिन करो फिर मुझे बताओ। हर घंटे में 2 बार मैं आत्मा देह से न्यारी हूं, 1-1 मिनट बिल्कुल आत्मा देखने लगो अपने को, ये देह अलग मैं अलग। 3 दिन में उसका मन आनंद से भर गया, क्योंकि शायद दिन में कम से कम 30 बार अभ्यास कर लिया, व्यर्थ आपे ही छूट गया, और उसके बाद योग अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसी ऐसी माताएं मिलती हैं जिनको देखकर गर्व होता है। एक माता आई अभी पिछले जूरिस्ट के प्रोग्राम में हमारे यहाँ था, छोटी आयु की मेरे से पूछने आई योग के बारे में। मैंने पूछा भाई गृहस्थी माताएं हैं, माताओं का योग तो थोड़ा थोड़ा ही होता है, कितना योग करती हो? कहा 5 घंटे तक होता है। वाह, मैंने उसको धन्यवाद दिया। कितना करना चाहती हो? मैंने कहा 8 घंटे कर सकती हो? कहा 8 क्यों, 9 करूंगी। देखो लगन ऐसी चीज है ना। तो मनुष्य अगर चाहे और उसको महत्व हो कि यही चीजें असली चीज है, इसी से तो हमारा जन्म जन्म सुंदर बनेगा। कोई किसी को तो काम आने वाला नहीं है यहाँ। अब भी लोगों ने देख लिया, न पैसे काम आए, न ही बड़े बड़े मोबाइल, आजकल इतने बड़े बड़े मिलते हैं ना कॉपी जैसे। मुझे भी लोग कहते ले लो तुम भी, मैंने कहा मैं ऐसे ही मुक्ति ठीक हूँ। क्योंकि बाबा ने एक मैसेज दे दिया था हमारे पास कि बहुत बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों में बहुत बिजी हो गए हैं। मुझे लगा भगवान को ये प्रिय नहीं है तो हमें भी प्रिय नहीं, बस केवल सुनना और सुनाने तक, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सुनी होगी आपने कहानी, मुझे तो टीवी देखने वालों ने सुनाई। एक व्यक्ति मरने वाला और चिल्ला रहा मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो। फिर आखिर उसने बोलना शुरू किया मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ले लो मुझे पानी पिला दो। अब वहां पानी पीने का था ही नहीं, मुर्दे पड़े हैं, पानी मुर्दों से गुजर रहा है, पिएंगे तो और मर जाएंगे। किसी के पास कोई पानी नहीं था, आखिर वो मर गया। 1 लाख में 1 गिलास पानी नहीं मिला। उसने ही ये काम भी किया था, आसपास वालों की मुर्दों की जेबें टटोली, मोबाइल निकले बड़े बड़े कि कहीं फोन कर दूं, लेकिन वो तो डब्बे थे। क्यों थे डब्बे? टावर ही नहीं थे। काम आया कुछ? क्या काम आएगा सोच लो अच्छी तरह। क्या काम आएगा माताओं को? पुण्य कर्म, दूसरा श्रेष्ठ स्थिति, तीसरा बाबा। बहुत अच्छी कहानी सुना देता हूँ सच्ची। हमारे शांतिवन का एक वीडियो वाला भाई अभी अभी कश्मीर देखने गया, परसों मुझे सुनाया, बर्फ में फंस गया। 25 लोग थे आसपास, सब कोशिश कर रहे निकालने की और ये भी परेशान हो रहा, नहीं निकाल पा रहे। अचानक इसको याद आया बाबा, लेकिन थोड़ा बाद में आया। हम लोग क्लास में बहुत चर्चा करते हैं, वो भी आता है, बाबा का आह्वान करो। और जैसे ही बाबा का आह्वान किया तो पता नहीं वहां बर्फ पे चलने वाली नाव जैसी होती है, एक नाव वाला आया और इसको उठा के नाव पे डाला और बाहर ले गया, मुक्ति हो गई। खुद सुना रहा था, परसों सुनाया मुझे, कहा देखो। और बेचारे के चेहरे पर आया हुआ था, वो सब दिख रहा था घबराहट जो उसको परेशानी हुई है। 5 और गए थे, वो भी कहीं फंसे जरूर थे, बता नहीं रहे हैं, पतले पतले होकर आए हैं। सब उनको देख के समझ रहे हैं वो गुमसुम है कि गड़बड़ तो बहुत हुई है। क्या काम आएगा? पुण्य श्रेष्ठ स्थिति बाबा। बाबा भी उन्हें काम आता है जिनके पुण्य हो, पापियों को नहीं, ये भूलना नहीं है कभी। जिसने अपने धन को पुण्यों में बदल दिया, सुन ले सभी माताएं, माताओं ने छुपा के बहुत रखा माल, वो तो खा ली जाएगा। जिसने धन को पुण्यों में बदल दिया उसका विनाशी धन बन गया अविनाशी, वही काम आएगा, बाकी कुछ नहीं। देख लो ये सीन हमें बहुत कुछ सिखाता है। ऐसा भयानक विनाश हुआ है, 6 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के 50% नष्ट हो गए, माना कई लाख लोग मरे हैं, और धन माल जानवर पशु पक्षी तो न जाने कितने। एक और हंसी कहानी मुझे सुनानी आपको। हमारा जहाँ लौकिक प्लेस है ना, वहीं के पास से गंगा बहती है, बिल्कुल पास एक छोटा तीर्थ है वहाँ हरिद्वार के बाद। तो एक हिरण और चीता भी बहते हुए आ गए। अब बेचारे 2 दिन बहे 4 दिन बहे, पत्थरों से टकराए, कैसे टकराए, कहीं उन्हें छोटी सी जगह मिली, ऊंचा सा टीला, उस पे बैठे हैं दोनों, पास पास बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं कि जान पहचान तो है कुछ। न हिरण भाग सकता, न चीता उसे मार सकता। दोनों की ऐसी दयनीय स्थिति लोगों ने देख लिया, फिर तो वीडियो वाले आ गए, पत्रकार आ गए और वो सब सुंदर खेल बन गया। वो बैठे हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, बड़ा विचारणीय दृश्य है कि मृत्यु से लड़ते लड़ते दोनों की हिंसक वृत्ति या भागने की वृत्ति समाप्त हो गई। मैं वो सीन देख रहा था यहीं से, कहा मगर आके पड़े हैं बाहर डेड जैसे पड़े, न जाने क्या क्या बह आया। तो काम आएंगे पुण्य श्रेष्ठ स्थिति और बाबा, इसलिए सभी बहुत अच्छी तरह अपनी स्थिति को महान बनाएं। टाइम होता जा रहा है, मैं वो पहली बात आपको बताना चाहता हूं जो मैंने कहा था आखिर में बताऊंगा। सवेरे के 10 मिनट हमारे लिए जीवन का बहुत सुंदर समय है, 10 मिनट। और क्यों सुंदर है इसके विस्तार में अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर्मन जागृत होता है। जितने सुंदर विचार आप सवेरे उठते ही करेंगे वही आपका भाग्य होगा, वही आपका जीवन होगा। मैं कुछ खराब विचार आपको सुना देता हूं जो कई लोग करते हैं, उठे थोड़ी देर से उठे और उठते ही मन उदास, मेरी यही समस्या है। मैं हंसी में ये कहता हूं कि जो 4 बजे से पहले उठते हैं उनको तो उठते ही मिलता है भगवान, और जो 6 बजे के बाद उठते हैं उनको उठते ही मिलती हैं समस्याएं और तनाव, होता है नहीं ये। उठते ही जो पहला संकल्प हम करेंगे वही हमारा जीवन होगा। उठते ही आपने सोच लिया बहुत समस्याएं हैं जीवन में, आपने समझ लिया, आपने समस्याओं का आह्वान कर लिया। उठते ही आपने सोच लिया हम तो बहुत गरीब हैं बाबा, मुझ गरीब बच्ची का नमस्कार, तो बाबा कहेगा तथास्तु, ये गलती न करना, मैं तो बहुत दुखी हूँ। आंख खुलते ही दुख आ गया सामने, मैं तो बहुत दुखी हूँ, इसने मुझे बहुत तंग करके रख दिया, पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी मेरा, न मरती न जीने देती। आपने दुखों का आह्वान कर लिया, उठते ही क्या सोचेंगे, उठते ही तो प्रभु मिलन, और पहला ही संकल्प करना मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। खुल जाए एकदम दिमाग को, खोल देना, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, मेरे जैसा धनवान, जोर से न कहना लेकिन चोर न सुन ले, बिल्कुल अपने अंदर गुड फीलिंग्स, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। ऐसे आप 10-15 संकल्प चुन लो अपने रोज, कभी कुछ कभी कुछ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समस्याओं से अधिक पावरफुल हूँ, मेरे परिवार में बहुत खुशहाली है, बाबा ने सब कुछ दे दिया है, हम सब बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं क्या होगा ये नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। समझ रहे हैं ना, अभी टाइम नहीं है, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। जो संकल्प हम सवेरे उठते ही करेंगे वही हमारा जीवन होगा। और भी अच्छा कर सकते हैं, मेरा आज ऐसा होगा, 5 पॉइंट कोई भी नोट कर ले, आज मुझे कदम कदम पर सफलता मिलेगी, आज मुझे कम से कम 5 गुड न्यूज मिलेंगे, आज जो भी मेरे पास आएगा वो संतुष्ट होकर लौटेगा, आज का मेरा जीवन निर्विघ्न बीतेगा, आज मैं सबको प्यार बांटूंगी। 5 बातें फिक्स कर लो, मेरा आज ऐसा होगा। तो अपने आज का निर्माण आप सवेरे ही कर सकते हैं और आपको अनुभव होने लगेगा जो आपके सुंदर संकल्प हैं वही आपका आज है। उठते ही आपने सोचा ये बात है, पता नहीं आज ठीक होगी या नहीं, तो गए, ये आज ठीक होगी, इसमें बहुत विश्वास, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे ये सत्य है कि हम बहुत सुखी हैं, ये सत्य है कि हम बहुत भाग्यवान हैं, सत्य है ना, स्वीकार करते हुए ऐसा आप करेंगे। विशेष ध्यान देंगे पहला संकल्प, पहला बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ विशेष प्राप्त करना चाहते हैं तो रात को निश्चित करके सो जाओ, सवेरे उठते ही पहला संकल्प ये करेंगे, 3 बार कर लेना, वही दिखाई देगा आपको। तो इस तरह अपने जीवन को सभी को महान बनाना है और संसार के काम आना है। ठीक है, ओम शांति। रात को बस अब क्लास के बाद सो जाना है जल्दी।
अमृत लेना इसलिए नहीं उठा जाता।
हाँ, जो लोग रात को 12 बजे तक सो काम करते हैं उनको मुश्किल होती है। दिनचर्या को ऐसा अच्छा रखना है कि 10:30 तक सो जाए, 10:30 तक सो जाए। कल शांतिवन में है।
12 बजे आ सकते हैं कल?
नहीं बाब, आप बहुत प्रोग्राम होगा आपका।
नहीं, 12 बजे आप आ सकते हैं तो।
चलो देखता हूँ अभी।
ओम शांति। वैसे तो सूर्य सवेरे निकलता है लेकिन हमारा ज्ञान सूर्य तो सदा
आज रात को निकल गया, कोई बात।
क्योंकि ये चैतन्य ज्ञान सूर्य है ना, तो इसलिए चैतन्य ज्ञान सूर्य तो जब चाहे तभी निकल आता है, तभी चमक जाता है। और सूर्य निकलने से तो सबको खुशी होती ही होती है। तो हमारे योगी जीवन में हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कितनी रमणीकता से सूर्य भाई ने हम सबको ये बातें सुनाई हैं। मगर इनको सुन के केवल क्या करेंगे, कॉपी में लिख लिया? अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास कौन करेगा? थोड़े हाथ उठे ना, कोई तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं हाथ, पता नहीं ये उठा हाथ उठ रहा है कि आधा नीचे जा रहा है। युक्ति से हाथ उठाते हैं कोई कोई तो। इसलिए मुझे करना है, मैं ही करूंगी। ऐसे नहीं सब करेंगे, सब गोलमाल नहीं करना है, मैं करूंगी। ये हमारे अंदर दृढ़ता जरूर चाहिए। तो उन्हें सूर्य भाई का बहुत 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 शुभ भावनाओं सहित, दिल की दुआओं सहित बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और सवेरे अमृत वेले के लिए यहीं आएंगे। मुरली क्लास के लिए सवेरे कहाँ जाएंगे? ओम शांति भवन में। और फिर 10 बजे यहाँ ही क्लास के लिए कल आएंगे, फिर कल का प्रोग्राम कल सुनाएंगे। तो चलो, अब कल आपको क्या पाना है वो अभी जरा संकल्प कर लो, ताकि सवेरे उठते ही चालू कर लो अभी से ही प्रोग्राम। चलो चलें बाबा के पास।